शांति। आज के इस नुमा शाम के सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं मास्टर मुरलीधर, आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं और बाल्यकाल से ही ईश्वरीय मार्ग पर चलते चलते लौकिक पढ़ाई भी पढ़ी, अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ी और बड़े हुए और 71 में पहली बार मधुबन में आए और फिर 72 में दूसरी बार, और जब दूसरी बार आए तो मधुबन निवासी बन गए और तब से लेकर आज दिन तक आप मधुबन निवासी बनकर बाबा के यज्ञ की खूब सेवा कर रहे हैं। आरंभ में 76 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के निमित्त बनाया और वो है मुरली की सेवा, कि जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी करना और सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, और वो सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुरलियों पर आधारित एक टॉक शो भी आपने किया जिसके 1000 एपिसोड्स आपने पूरे किए, और इसी मुरलियों के आधार से पूरे भारत भर में तो क्या, विदेश में भी जाकर आप भट्टियां कराते हैं और ब्राह्मणों को उन्नति के लिए उत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं और उसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट सभी को मिला है जिससे बहुत अच्छी खेती हो रही है। तो अनेक उपलब्धियां आपने अपने इस ब्राह्मण जीवन में, समर्पित जीवन में प्राप्त की है। आज हम आपसे उन्हीं अनुभवों के आधार से सुनना चाहेंगे कि मुरलीधर की मुरली सुनकर सच्चे गोप गोपियों की तरह हम सचमुच अपनी सुदबुद्ध देह की कैसे भूले, इस पर हमें मार्गदर्शन दे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। तपस्या भूमि में तपस्या करने का सौभाग्य सभी को मिला है। ये पांडव भवन जहाँ पर डायरेक्ट शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की मुखारविंद से जो महावाक्य उच्चारण किए, एक छोटे से स्थान पर बैठकर जो मुरलियां हम सभी अभी सुन रहे हैं, ये पता है कहाँ पर चली हैं? ये ईशु दादी जी का ऑफिस जो है अंदर पुरानी बिल्डिंग में ही, उसके पीछे साइड में थोड़ा स्पेस अच्छा है, वही क्लासरूम था और वहाँ ही 15-20 भाई बहनों के सामने बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करके ये साकार बाबा की मुरलियाँ चली हैं। उसके बाद हिस्ट्री हॉल जब बना, जो सामने छोटा हॉल है, उसमें भी 2-3 साल बाबा ने मुरली चलाई है और वहाँ ही रिकॉर्डिंग सिस्टम आया था, टेप मशीन आई थी। उसके पहले टेप मशीन तो क्या, बाबा अपने सामने माइक भी रखने नहीं देते थे, कहते थे बच्चे माइक पर पढ़ाई थोड़ी होती है, इसकी क्या जरूरत है, माइक के बिना रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो छिपा के कहीं हमारे दादा रख देते थे, चंद्रहास दादा को ड्यूटी थी रिकॉर्डिंग की, गीत बजाने की, तो छिप करके कहीं माइक रख के रिकॉर्ड कर लेते थे। तो कुछ एक मुरलियां मैं समझता हूँ शायद 200 या 250 मुरलियां रिकॉर्डेड हैं, बाकी तो जो हमारी दादियों ने नोट्स लिए वही नोट्स के आधार से मुरलियां तैयार की गई। और जब मैंने सेवा ली थी उस समय करीब 200 या 250 मुरली छपती थी, बहुत कम सेंटर थे और साइक्लो स्टाइल मशीन हाथ वाली उस समय आई थी। एक बार टाइप करते थे, स्टेंसिल काट देते थे, तो सिंधी हिंदी और इंग्लिश तीन भाषाओं में मुरली प्रिंट होती थी। धीरे धीरे वो मुरलियाँ बढ़ने लगी, सेंटर्स बढ़ने लगे और टाइप का काम इतना बढ़ गया और मैं अकेला टाइपिस्ट था। तो एक ही मुरली को 4 बार 5 बार स्टेंसिल काटना, फिर करेक्शन करना, फिर लिथो करना, फिर साथ में 2 भाई मिल करके पोस्टिंग करना, सेवाएं थी। अभी तो साइंस ने बहुत सुख दे दिए हैं और उन सुखों को हम सब देख रहे हैं कि हर एक के हाथ में मुरली, चाहे आवाज में सुन लो चाहे पढ़ लो, और हर भाषा में। ये भी साइंस का एक अच्छा सुख मिला है। ये बाबा की मुरली, मुरली तो नाम से ही आप सब समझते हो, क्योंकि जब मुरली नाम आता है तो श्री कृष्ण जी की मुरली याद आती है। और जब कोई वृंदावन मथुरा में जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा स्थान है, मधुबन बगीचा है, मैं भी एक बार गया था वहाँ, एक कदम का झाड़ है, कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो गायें भी भाग करके आ जाती थी दौड़ दौड़ करके, और गोप गोपियाँ भी अपने घरों से जिस भी हालत में होते थे सुध-बुध भूल जाते थे, भागते थे, मस्ताने हो जाते थे, डांस करते थे। जमुना के किनारे पर भी दिखाया है तो मधुबन में भी दिखाया है, यादगार बनाई है, बहुत सुंदर। कई बार बाबा कहते हैं भक्तों के बुद्धि की भी कमाल है जो ऐसी सुंदर यादगार बनाई है। लेकिन संगम की बातों को सतयुग के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया है, इसलिए बाबा को स्पष्ट करना पड़ता है बच्चे मुरली क्या है, गोप गोपियाँ कौन है, सुध-बुध कौन से भूलते हैं। ऐसे थोड़ी है कोई बेहोश हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। लेकिन एक मुरली जो बजाने वाले होते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा जिसको बीन कहते हैं, बीन, उसको भी मुरली कहते हैं। और बीन बजाने वाले जो सांप निकालते हैं उनकी भी धुन ऐसी होती है कि बीन पर बजते ही वो सांप मगन हो जाता है और ऐसी सुध-बुध अपनी भूल जाता है। जब बिल्कुल खो जाता है उस मुरली की धुन पर तो वो उसको पकड़ लेता है बजाने वाला, और उसको पकड़ करके उसके जहर के दांत निकाल देता है, फिर अपनी टोकरी में रख करके कमाई का साधन बना लेता, उससे डांस कराता है। तो बाबा ने दोनों पार्ट बजाए हैं संगम पर, हम सब जहरीले दांत वाले कितने विषैले थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब एक एक के अंदर फुल फोर्स में भरे हुए थे। बाबा ने ऐसी बीन बजाई, ऐसी मुरली बजा दी जो हम सब उसके मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, और बाबा ने हम सब के विषैले दांत को निकाल दिया और अभी डांस करा रहा है, नाचो भी चारों तरफ से। बाबा का पैगाम दो, संदेश दो, अगर जरा भी कहीं विष होगा तो लोग डरेंगे फिर। तो देखना बाबा ने अपने मुरली की धुन से हमारे दांतों को, जहरीले दांतों को निकाला है कि नहीं, कि अभी तक भी है अंदर। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की बात है कि इतने दिनों से हम मुरली सुनते हैं, बड़ी लगन से सुनते हैं, भावना से सुनते हैं, लेकिन कई बार मुरली का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा देह मान को भूलती नहीं है। शुद्ध बुद्ध भूलना माना देह भान समाप्त हो जाए, देह अभिमान खत्म हो जाए और देह अहंकार का तो अंश भी न रहे। इसलिए कहते हैं योगी वो है जिसने अहंकार को मारा। तो ये जो विषैलापन है अंदर, जिसके कारण सब विकारों ने प्रवेश किया है, बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे अभी नेचुरल नेचर बनाओ देही अभिमानी रहने की। जैसे देह मान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ये पाठ पक्का करके देह मान को गला दो। बहुत शुद्ध पवित्र अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। गोप गोपी जब कहते हैं तो गोप का वास्तविक अर्थ ही है जिसने कर्म इंद्रियों को पी लिया, समाप्त कर लिया। उनका आकर्षण, उनका खिंचाव जब समाप्त हो जाए तब सच्चे गोप और गोपी कहलाते हैं। और गोपियों के लिए तो कहते हैं उत्तो दीवानी मस्तानी। हमारी दीदी का नाम लौकिक में भी गोपी था, सुना होगा, आप सब दिल्ली के हैं। हमारी दीदी ने दिल्ली में बहुत सेवाएं की। दीदी मनमोहिनी की बात कर रहा हूँ, देखने वाले बहुत कम लोग होंगे। हैं कोई बैठे हैं जिन्होंने दीदी मनमोहिनी को देखा है? एक माता हाथ उठा रही है। अच्छा, एक दो हो, आप तो पुरानी है, और कोई नहीं है ना? अच्छा, दीदी मनमोहिनी का फोटो तो कहीं कहीं मिलेगा आपको देखने को, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता है। इसमें है, ये सब इसमें है, दादी के साथ में इस साइड में। दीदी जी की पालना हमने बहुत ली है और दीदी सचमुच जैसा नाम था वैसी गोपी थी। बस बाबा के प्यार ने, बाबा की मुरली की मस्तानी, बाबा की मुरली बजी बाना, दीदी उसके नोट्स लेना, उसके साथ बहुत अच्छा चिट चैट करना, खेल पाल करना। तो दीदी का अपना उनके प्रति, बाबा के प्रति, साकार ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत जिगरी प्यार था। और उस प्यार के कारण शिव बाबा इनके मुख से जो महावाक्य उच्चारण करते, जैसे मम्मा ने सत्य वचन कह करके उसको फॉलो किया। मम्मा की जीवनी में तो आप सबने पढ़ा होगा, जानते हो कि मम्मा जिसके एक ही स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी भी अपना संकल्प, अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, जो बाबा कहे। और इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड, जब बाबा मुरली सुनाने के लिए क्लास में आते थे, हिस्ट्री हॉल में आप जाएंगे, अभी तो शायद वहाँ चेयर डाल दी है, वहाँ दो गद्दियाँ थी पहले, और एक गद्दी पर मम्मा बैठती थी, एक पर बाबा बैठते थे। तो मम्मा जब मुरली सुनाती थी तो बिल्कुल सबको मंत्र मुग्ध कर देती थी। मम्मा की मुरली भी बहुत रमणीक भी थी और बहुत स्पष्ट थी। एक एक बात अभी हम रिवाइज करते हैं कभी कभी, मुरली के नीचे सुनते हो आप सब। ये मम्मा की मुरलियाँ अचानक मुझे दादियों की डायरी मिली, 51 की डायरी है, और 51 में मम्मा जो मुरलियाँ चलाती थी वो कोई ने 60 नोट्स लिए हैं, सिंधी में ही लिए हैं। तो जब मिली तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया मुझे, करीब उसमें 175-180 मुरलियाँ हैं। तो जब मैंने उनको टाइप किया तो कुछ पुराना ज्ञान तो मिक्स था, क्योंकि स्पष्ट इतना उस समय नहीं था। उसको थोड़ा सेट करके फिर सबको भेजा। मम्मा की बातें आप सब समझते हो, कितना स्पष्ट ज्ञान, कितना बाबा के प्रति रिस्पेक्ट उन महावाक्यों में दिखाई देता है। और जब बाबा की खड़ाओं की आवाज़ मम्मा सुन लेती थी कि बाबा आ रहे हैं, तो बाबा के सीढ़ी चढ़ते ही, हिस्ट्री हाल की बात, मम्मा मौन हो जाती थी, एक शब्द भी नहीं बोलती थी। बाबा कहते थे, बच्ची अभी जो सुना रही थी पूरा करो, पूरा करो। बाबा के सामने एक शब्द नहीं बोला। बाबा आए माना मम्मा मौन, और एकदम जैसे चातक पंछी होता ना, ऐसे तुझे ही देखती रहूं बस, बाबा की तरफ मुंह घुमा लेती थी गद्दी पर ही बैठे बैठे, और बाबा मुरली सुना रहे हैं और मम्मा बहुत ध्यान से ऐसे एक टिक सुन रही है। फोटो है ऐसा मम्मा का। तो मम्मा ने इसी मुरली की धुन से, इसी के आधार से अपनी जीवन इतनी महान बनाई, नंबर वन बनी। श्री राधे, श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने दीदी को दिल्ली की सेवाओं से मधुबन में बुलाया और अब मम्मा की ही चारपाई पर दीदी को रखा। वही कमरा है जो यहाँ पर सामने आप जाएंगे, अभी तो ऑफिस बना दिया, सेटिंग रूम बनाया है, लेकिन पहले वो दीदी जी का ही स्थान था, मम्मा का ही कमरा था। तो ऐसी दीदी की जो एक मस्तानी जीवन थी, पक्की गोपी, एक बाबा दूसरा न कोई, कोई कैसा भी हो, कितना भी सहयोगी हो, कैसा भी धनवान हो, कैसा भी हो, किसी पर आंख नहीं गई। एक वृत्ता किसको कहते हैं, खुद की भी नहीं गई और दूसरे को भी अगर कहीं इधर उधर भटक जाए, क्योंकि आजकल कई आत्माएं अपना प्रभाव डाल देती हैं लोगों पर, अपनी बुद्धि का प्रभाव डाल देती हैं, अपनी रिसर्च का प्रभाव डाल देती हैं, लेकिन दीदी कहती थी प्रभावित केवल एक पर होना है। कोई आत्मा अगर, कोई भी अगर विशेष है, विशेषता संपन्न है, तो उसको ये विशेषता दी किसने है। चार पांच दिन पहले बाबा कह रहे थे कि अगर कोई प्रभु देन को अपनी समझ करके प्रयोग करता है तो ये महापाप है। अगर कोई की विशेषताएं हैं भी, बहुत अच्छी रमणीक जीवन है, बहुत मधुर वाणी है, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है, तो ये दिया किसने, बनाया किसने ऐसा उसको, उसकी तरफ ध्यान जाए, बनाने वाले तरफ ध्यान जाए, उस आत्मा पर आकर्षित न हो जाए। इसलिए दीदी का ये बहुत पक्का पाठ था और सबको कहती थी, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, मुरली है तो एक की है, दूसरी मुरली पर कभी भी किसी की वाणी पर, वाणी माना ही महावाक्यों को ही मुरली कहते हैं। वो तो मुरली जो अगर कोई सुरीली बजाता है तो उस पर डांस की जा सकती है, लेकिन वो शारीरिक है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होने लगे, अति इंद्रिय सुख। अब अति इंद्रिय सुख का अर्थ ही है कि इंद्रियों से परे है, ये स्थूल डांस करना, रास करना, स्थूल में हंसना बहलना, ये तो एक इंद्रिय रस हो गया। लेकिन जब बाबा के महावाक्य उच्चारण होने लगे तो गोप गोपियों की जो मस्ती थी, सुदबुद्ध जो भूलती थी, वो देह मान को भूल जाते थे, और देह मान को भूल करके बस मेरा तो एक बाबा, उसमें मगन हो जाती थी, मस्त हो जाती थी। उससे जो आंतरिक सुख प्राप्त होता है उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। वो अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों से नहीं मिल सकता, वो अनुभव बाबा के महावाक्य सुनने से जब एक एक बात अंदर जाने लगती है, समाने लगती है जीवन में, तो उसका आनंद, उसका सुख अनुभव होता है। तो हम सब ने इसका अनुभव तो किया है, रसा स्वादन तो सबने किया है। बाबा की मुरली अगर एक दिन न मिले तो लोग बेचैन हो जाते हैं, क्यों नहीं मिली आज की मुरली, क्यों नहीं मिली। भले हमने कितनी बार इसको रिवाइज किया है, पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन जब सुनो तभी लगता है तो नई है, आज की ही है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाबा के मुरली तो ग्रंथ का वचन है। जैसे कोई ग्रंथ के वचन के लिए कहते हैं जिसके लिए जो आवश्यक है वही वाक्य निकले, महावाक्य निकले, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं के लिए जो आवश्यक है, जब जरूरत है, कोई हलचल है, कोई परिस्थिति है, कोई प्रश्न है, तो इधर उधर जाने की बजाय मुरली देख लो, उसी तारीख की मुरली में उसका उत्तर है। ये किसकी जादू है? बाबा की है ना। कई बार लोग कह देते हैं आपने ये सेटिंग कैसे की, आपने ऐसे कैसे भेज दिया, हमारी प्रॉब्लम को आप समझते थे क्या? मैं कहता हूँ हमको क्या पता है भाई, हम तो 3 महीने 4 महीने पहले मुरली की अच्छी सेटिंग करते हैं, लक्ष्य रखते हैं। क्योंकि एक बार हमारी दादी जानकी जी के सामने गए थे, वो विदेश में थी, तो दादी और दादी जानकी जी दोनों एक किसी कमरे में ऑफिस में बैठी थी, मुझे देखा तो दादी जानकी कहती हैं बड़ी दादी को, दादी ये राजू है ना, तो दादी कहती हाँ ये राजू है, ये मुझे बासी भोजन खिलाता है, बासी भोजन खिलाता है। तो मैं ऐसे सोचने लगा, मैं बासी भोजन, मैं दादी मैं भोजन नहीं बनाता हूँ। बड़ी दादी भी कहती है भोजन में नहीं है तो मुरली का काम करता है। अरे उसी के लिए मैं कह रही हूँ, हमारा भोजन तो मुरली है ना, और हमको मिलती है जब मधुबन में आज चलती है वो 1-2-1.5 महीने के बाद हम सुनते हैं, तो बासी नहीं हुआ तो क्या हुआ, बासी भोजन हमको देते हो। तो बड़ी दादी ने कहा भाई कुछ करो, नया कुछ करो, रोज मिले इनको कैसे मिले। अब उस समय तो साइंस नहीं थी इतने, अभी तो साइंस ने बड़ा सुख दिया, जो यहाँ सुन रहे हो अभी ऑनलाइन कहीं भी सुन रहे हैं, लेकिन उस समय तो ये कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने को कहा गया कि आप कैसे भी करके, मुरलियाँ तो हैं ही अपने पास, वही रिपीट रिवाइज हो रही हैं, तो उसकी सेटिंग करो। उसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ता है कि दिन बदल ना जाए, अगर गुरुवार है और गुरुवार की मुरली उस समय चली है और बाबा उसमें कहते आज गुरुवार है और हम यहाँ शनिवार को या दूसरे दिन रिपीट करें, बहने ऐसे ही पढ़ दें आज गुरुवार है, तो सब हंसने लगेंगे, मुरली भले उस समय की लेकिन कहेंगे तो बहन जी आज गुरुवार नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान देना पड़ता है, कोई त्योहार है, कोई ऐसी बात है जिस स्पेशल बात बाबा ने किसी दिन के लिए त्योहार के लिए कही है, मान लो आज दिवाली आएगी, राखी आएगी, अगर रक्षाबंधन के दिन कोई दूसरी मुरली चल जाए और उस दिन निकले कि आज शिवरात्रि है या आज कुछ भी है, तो लोगों का प्रश्न उठ जाते। इसलिए जब सेटिंग करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दे करके कि तारीख भी वही आए, दिन कोई ऐसा त्यौहार हो तो वही निकले, वो सिर्फ इस पर ध्यान रखते हैं। बाकी किसकी क्या प्रॉब्लम है, ब्राह्मणों के आगे कौन सी परिस्थिति उस दिन आएगी, वो मुझे क्या करना, वो बाबा जाने, उसके बच्चे जाने। तो जो कहेगा, जो टच करेगा, कई लोग कहते हैं कैसे आप मुरलियाँ सेट करते हो, कैसे वरदान निकालते हो, तो बाबा के आगे ऐसे सरेंडर हैं, बुद्धि को सरेंडर कर दो, सरेंडर है, कराने वाला करा देता है। तो जब बाबा को हम बुद्धि से समर्पित होकर के कोई भी काम करते हैं, कल एक बहन कह रही थी, कल मैं बॉम्बे में था और इस समय हमारे सामने 1000 माताएं बैठी थी, 1000, इतना झुंड था जो नीचे ऊपर 4 फ्लोर फुल माताओं से भरे हुए थे, बोरीवली में था। तो एक बहन कहती है भाई जी जैसी मुरली वैसा ही वरदान, वैसी ही मम्मा की मुरली, कैसे सेटिंग करते हो? मैंने कहा मैं दिए बहन जी मैं नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ी इस पर अटेंशन देना है कि मैं वैसा ही वरदान सेट करूँ, वैसी ही मुरली सेट करूँ, सबको लगे कनेक्ट है, कनेक्ट वो करेगा, मुझे नहीं कनेक्ट कर, मैं अपने को कनेक्ट करता हूँ। अगर मैं बाबा से कनेक्ट हूँ, बाबा को जो कराना है वो कराता है, और जिस बच्चे के अंदर जो प्रश्न है, जो हलचल है, अगर सच्ची भावना है, सच्चा प्यार है बाबा की मुरली से, तो मुरलीधर तो हर एक के दिल को जानता है। दिलवाला है ना, तो वो अपने आप बच्चों को उसका रिस्पॉन्स दे देता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ध्यान देना। कई लोग सोच लेते हैं मुरली तो वही हैं, लेकिन आज तक भी अनुभव ये होता है कि मान लो मैंने ही मुरली तैयार की, कितनी बार पढ़ी है, कितनी बार सेटिंग की है, आज की मुरली अगर मैं न सुनूं, न पढ़ूं, तो ऐसे लगता है बहुत कुछ मिस कर दिया। आज के लिए बाबा क्या कह रहा है, आज की मुरली में क्या है। तो अगर हम बाबा की मुरली को रोज ऐसी अटेंशन से, ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो हमारे आगे कोई भी परिस्थितियां आती हैं, किसी भी प्रकार का पेपर आता है, उसको हम बहुत सहज पार कर लेते हैं। यही तो बाबा की मुरली की विशेषता है। और मुरली अगर रोज सुन रहा है कोई, फिर भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, माना उसने अपनी शुद्ध बुद्ध को खोया नहीं है। मुरली सुनते समय वो ये सोच रहा है ये बहन मुरली सुना रही है, ये फलाना मुरली सुना रहा है, ये अपनी एडिशन कर रहा है। मैं ध्यान तो देता हूँ, बहनों की क्लास जब कराता हूँ कहता हूँ बहन जी मुरली सुनाओ, मुरला नहीं सुनाओ। कई लोग अपनी बहुत एडिशन करते हैं और ऐसी एडिशन कर देते हैं जो सुनने वाला समझ ही नहीं पाता ये बाबा की मुरली है या इनकी मुरली चल रही है। इसलिए टीचर्स बहनों को बहुत ध्यान देना चाहिए, भगवानों वाच्य के अंदर कुछ भी हो, मुझे अपनी एडिशन नहीं करनी है। जो बाबा ने कहा है, आपको अगर कुछ कहना है, अपना चिंतन सुनाना है, क्लास कराना है, तो आगे या पीछे जब समय हो कराओ। लेकिन मुरली को अगर बहुत श्रद्धा से, भावना से, भगवानों वाच्य इन बच्चों के लिए, मेरे लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, उसी भावना से सुनते और सुनाते हैं, तो अंदर जाती है, परिवर्तन आता है। इसलिए मैं कहता हूं अगर मुरली सुनते परिवर्तन नहीं आता है, तो मुरली सुनने की विधि में कुछ गड़बड़ है, यथार्थ विधि नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। नहीं तो मुरली तो है ही परिवर्तन करने वाली, भगवानों वाच्य है और भगवान ने बच्चों को कहा है, बच्चे बच्चे कह करके प्यार से सिखाया है। चार ही सब्जेक्ट पढ़ाई और चारों सब्जेक्ट के पीछे जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए एक नई सतयुगी राजधानी की स्थापना करने के लिए, द्वापर कलयुग की राजाई दान पुण्य से स्थापित हुई। जिसने जो दान किया, पुण्य किया, उसके आधार से राजाई घर में उसको जन्म मिला और उस जन्म के अनुसार उसको उसकी प्रारब्ध मिल गई, दान पुण्य का रिटर्न था। लेकिन जो सतयुग और त्रेता की राजाई अभी स्थापन हो रही है संगम पर, वो स्थूल धन के दान पुण्य से नहीं, वो पढ़ाई के आधार से हो रही है। और पढ़ाई जो स्वयं भगवान ने पढ़ाई है, उसमें केवल चार ही सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट को अगर यथार्थ रीति से कोई ने समझा और उसी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को अपने जीवन में उतार लिया, जो उसका लक्ष्य और उद्देश्य है उसको यथार्थ समझ करके पालन किया, तो उसके जीवन में स्वतः परिवर्तन दिखाई देगा। इंद्रिय जीत आत्मा बन जाएगी, स्वराज्य अधिकारी बन जाएगी। इसलिए जब ज्ञान की कोई पॉइंट सुनते हो, जब हम लोगों ने शुरू शुरू में मुरली की रस जो बैठे, क्योंकि हमको तो लौकिक में मुरली भले घर में चलती थी, कभी सुना ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। 4 साल की उम्र से ही घर में मुरली शुरू हो गई थी, गंगा आ गई थी घर में, लेकिन गंगा में नहाया नहीं मैंने कभी, क्योंकि थोड़ा सा अलग संग भी था और पिताजी के जो बड़े भाई थे बिल्कुल नहीं चाहते थे ब्रह्मा कुमारी में कहीं चला जाए, इसलिए कैसे भी करके मुझे अलग कर लेते थे वहां से। बाकी इकलौता बेटा था, ये चला जाएगा तो कुलदीपक कौन बनेगा, होता है ना परिवार में, तो मुझे बहुत बचाने की कोशिश की कहीं इसके कान में मुरली न चली जाए। तो इसलिए मम्मा आई, तब तो मैं छोटा ही था, 4 साल का, तो 35 दादियां गांव में आई। फिर बाबा जब कानपुर में आए, तभी भी सब गांव वाले गए बाबा से मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया, मुझे अलग गांव गंगा नहाने के लिए ले गए। तो मुरली की बातें, मुरली क्या है कुछ पता नहीं था, और जब मुरली यहाँ सुनते थे तो भी कई शब्द ही समझ में आते थे, क्या है। अब मुरली में कभी हिंदी है, कभी सिंधी है, कभी अंग्रेजी है, कभी मराठी है, कभी पारसी है, सब मिक्स चटनी है। सब बातें बाबा ने जो जैसा बच्चा सामने है वैसे शब्द उच्चारण कर लिए। अब बाबा के ही तन को उसी बाबा ने यूज किया, ब्रेन तो ब्रह्मा का ही है ना। अब ब्रह्मा बाबा ने जो स्टडी की है, जो पढ़े हैं, कुछ शास्त्र पढ़े हैं कुछ कुछ, तो बाबा ने अपना ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्पष्ट किया, लेकिन लैंग्वेज जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा की यूज कर ली। इसलिए लैंग्वेज में जो भी ब्रह्मा बाबा की अपनी स्टडी थी, बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, सिंधी भाषा जानते थे और उस समय समाचार सुनते थे, तो जैसा ब्रेन यूज होता है। आज गुलजार दादी के द्वारा जब से बाबा ने पढ़ाया तो बहुत पवित्र शुद्ध एकदम निर्मल बुद्धि, कुछ भी पता नहीं संसार का, उनके ब्रेन को यूज किया और उस ब्रेन से जो मुरलियां निकली हैं वो क्या है, बड़े वंडरफुल महावाक्य लगता है। तो बहुत ऊंची बातें बाबा सुना रहा है। अव्यक्त मुरलियों को पढ़ते हैं लोग तो क्या यूज किया है भाषा का, लेकिन साकार बाबा के समय बाबा की अपनी स्टडी थी, अपना अध्ययन भी था, तो उसमें कई चीजें लोगों को लगता है ये क्या बाबा बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के मिक्स महावाक्य हो गए। इसलिए बाबा की मुरली को समझना, एक एक बात को समझना, तो दीदी का बहुत प्यार था, बहुत मधुबन मुरली से बहुत प्यार था, इसलिए मुझे स्पेशल दीदी ट्यूशन देती थी, क्योंकि टाइप सीखना शुरू किया, दीदी की राइटिंग पढ़ना सीखा, तो दीदी कहती थी देखो ये बात का ये अर्थ है, इसका ये भाव है, इसको इसलिए बाबा ने कहा है, तो सब कुछ सिखाती थी। बच्चे को जैसे सिखाते ना ऐसे, नहीं तो पता ही नहीं चलता था। कभी बाबा कहते मासी का घर है, मैं सोचता मासी का घर क्या होता है, अभी समझ में आता मासी का घर क्या होता है। तो ऐसे बाबा ने चार सब्जेक्ट बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाई। तो दीदी ने मुझे कहा कि तुम अपनी डायरी के चार भाग बनाओ, चार भाग डायरी के बनाओ और ज्ञान की पॉइंट्स क्या क्या है एक ही चैप्टर में एक ही तरफ लिखो, योग की अलग लिखो, धारणा की अलग लिखो, सेवा के लिए क्या कहते हैं वो अलग लिखो, और एक हफ्ते के बाद कहती थी टाइप करके ले आओ 15-20 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, जितनी तुमको नई नई मिली हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, एक ही मुरली में साकार बाबा की चारों सब्जेक्ट बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे पॉइंट्स निकालते निकालते समझ में आने लगा कि बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान, ज्ञान सागर ने नया ज्ञान दिया जो आज तक कहीं भर भी हमें सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन कह रहा है ऐसे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम निवासी है, ब्रह्मांड ब्रह्म तत्व आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। पढ़ा तो क्या था कि वही भगवान है, ब्रह्म ही भगवान है, कभी सोचे नहीं भगवान अलग है और रहने वाला अलग है, रहने का स्थान अलग है। कभी आत्मा ही परमात्मा हो गई, कभी आत्मा जाके अपने ब्रह्म घर में लीन हो जाएगी, बहुत कुछ ऐसी बातें सुनी शास्त्रों के आधार से लोगों ने जो सुना दिया। अब बाबा ने एक एक ज्ञान का राज सुनाया, स्पष्ट किया आप कौन हो, कैसे आए, कब आए, क्या क्या किया, कैसे पाठ बजाया, कैसे तुम वापस घर चलोगे, क्या हिसाब किताब है बनाए, उनको कैसे चुप्त करो, सब कुछ ज्ञान से स्पष्ट कर दिया। तो आप सब जो बाबा के बच्चे हैं ना, मुरली को उस रस से सुनो जो पता चले ये किस भाव से बाबा बोल रहा है। शब्दों में नहीं जाओ, कहीं शब्दों में जाओगे तो उलझ भी जाओगे, लेकिन ये इसके पीछे क्या चाहता है बाबा, उसकी भावनाएं क्या हैं, हमारे प्रति उनकी आशाएं क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, उसको समझना। अगर किसी ने ज्ञान को यथार्थ समझ लिया है तो ज्ञान की सब्जेक्ट को समझने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा अब नया बंधन नहीं बनाएगी, विस्तार में नहीं जाएगी। जो बुद्धि का बहुत विस्तार है, संबंधों का विस्तार है, जहां जहां बुद्धि भटक रही है, अटक रही है, ज्ञान अगर उसके पास स्पष्ट है, समझ में आ गया है कि सृष्टि का नाटक अभी बिल्कुल लास्ट घड़ियों पर पहुंचा है, अब परिवर्तन की बेला है, लेकिन परिवर्तन के पहले हर आत्मा को जैसे आई थी वैसे बन करके वापस जाना है, और बिना बनाए हुए वापस नहीं ले जाएगा बाबा। दो रास्ते बता दिया, या तो योग से चुक्तु कर लो, जो बनाया हिसाब किताब, जो इस पर मैल चढ़ी है आत्मा के ऊपर, बहुत अच्छी तपस्या करके अपने को शुद्ध करो, पावन करो, संस्कारों को निर्मल बनाओ, और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर हिसाब किताब है, धर्मराजपुरी है, चुक्तु करना ही पड़ेगा। अब ये ज्ञान है, ये समझ है, और उस समझ के आधार से बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे कल भी क्या कहा था, समझ और निश्चय। समझदार जो है वो समझता है इस समय सब आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है, ये नाटक पूरा हो रहा है, और जो नई सृष्टि की शुरुआत होगी उसमें वही देवता घराने की आत्माएं आएंगी, बाकी सब ऊपर घर में विश्राम करेंगे। ये समझ है, ये निश्चय है। अब जब हम सबको जाना है वापस, तो कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। जो बने हैं, जो बन गए हैं पिछले जन्मों में देहमान के कारण, उन्हें ज्ञान और योग से कट करना है, चुप्पू करना है, उस पर बहुत ध्यान देना है कि कोई भी हिसाब किताब अगर सामने आता है उसको बहुत धैर्यता के साथ, बहुत शांति के साथ, आया है जाएगा, कोई चीज सदा नहीं रहती, लेकिन कहीं उलझ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार वो ब्रेन पर बातें आ जाती हैं, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, इतना सोच लेते हैं कि क्यों हो गया, कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने तो इस जन्म में कोई को दुख ही नहीं दिया, मेरे सामने पेपर क्यों आ गया। फिर भगवान को भी दोष देंगे, अपने कर्मों का भी दोष देंगे, लेकिन पिछले क्या क्या कर्म किए वो तो किसी को पता ही नहीं है। इसलिए जब मम्मा के सामने पेपर आया, सबसे बड़ा पेपर तो उन्होंने पहले पार किया, बहुत बड़ा पेपर आ गया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मम्मा को देख के कोई ये नहीं कह सकता था ये पेशेंट है। कितना भी शरीर के अंदर दर्द था, तकलीफ थी, चेहरा एकदम प्रफुल्लित, और हमेशा मुरली उनकी लास्ट दिन भी चली है, कुछ भी शरीर को हो जाए लेकिन बुद्धि सदा सालिम रहनी चाहिए, बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव ना दिखाई दे। कर्म इंद्रियों ने कर्म गलत किए हैं, उनकी भोगना उसके साथ आई है, बहुत योग युक्त होकर के धैर्यता के साथ, शांति के साथ उसको चुप्तु करो, बाबा की याद में रह करके चुप्तु करोगे, हाय हाय नहीं करोगे तो सूली जैसी बात कांटा बन जाएगी, और अगर हाय हाय करने लगोगे तो खुद दुखी होगे, दूसरों को दुख दोगे, दूसरे परेशान होंगे, वो नया हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए किसके आगे नहीं आती, पुराने शरीर हैं, इतने जन्मों के हिसाब किताब हैं, कितने पाप किए होंगे राजाई घरानों में, क्या क्या लोगों को परेशान किया होगा, अब अंत समय में अगर वो कोई हिसाब किताब आया है तो बड़े ध्यान बाबा की शक्ति से, याद से चुक्तु कर लो। लेकिन अभी चलते चलते किसी पर प्रभावित हो गए, किसी से लगाव झुकाव हो गया, किसी से नफरत घृणा हो गई, किसी से टकराव में आ गए, किसी के प्रभाव में आ गए, नया हिसाब किताब बन गया, बनाना नहीं। ज्ञान की समझ यही है, समझदार वही है जो करने के, बोलने के, सोचने के पहले भी सोचता है। कहते सोचने के पहले भी सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना निर्बंधन, मुक्त स्थिति, कोई भी नया बंधन न क्रिएट हो, इस पर बहुत अटेंशन देना। और जो योगी है, जो रोज योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बाबा के साथ संबंध है, कनेक्शन जुटा हुआ है, तो जैसे कहते हैं जिसके हम संग में रहते हैं उसका रंग लगता है, अगर बुद्धि से हम बाबा के संग में रहते हैं तो बाबा पतित पावन है, एक बार प्योर है, कोई अशुद्धि उसमें नहीं है, इतनी परम पवित्र आत्मा के साथ अगर हम 10 मिनट भी बुद्धि को जोड़ करके रखें, उनकी याद में रहें, तो आत्मा पावन बन जाएगी, सतोप्रधान बन जाएगी, उसके अंदर जो मैल है, जो विकार हैं, बुराइयां हैं, जो जहर भर गया है, वो सब अपने आप निकलता जाएगा। इसलिए अगर बाबा से हमारा संबंध है, हम योग कर रहे हैं, लेकिन योग करते हुए भी इंद्रियों में चंचलता है, उत्तेजनाएं हैं, आवेश है, आवेग है, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, वैर भावना है, बदला लेने की भावना है, कितनी सारी विकारों के बाल बच्चे हैं, रचना है, और वो सब के अंदर कुछ न कुछ अभी भी अंश मात्र रहे हुए हैं। अगर सही दिशा में योग को हमने यथार्थ रीति से समझ करके बाबा के साथ अपने को कनेक्ट किया है तो बाबा की वो शक्तियां आत्मा को पावन बनाती हैं, स्वच्छ करती हैं, संस्कारों का शुद्धिकरण करती हैं, और जो भी संस्कारों में अशुद्धियां हैं वो साफ होती जाती, बहुत प्योर शुद्ध। देखो उसके मधुरता, सरलता, नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, सब गुण उसके अंदर दिखाई देने लगते। योगी आत्मा की निशानी यही है। कोई योग कर रहा है अभी अभी खूब अच्छी तरह से बाबा को याद करके उठा और बाहर कोई बात हो गई, गुस्सा आ गया, अपशब्द निकल गया, चिड़चिड़ेपन में आ गए, टकराव में आ गए, किसी को दुख दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया, क्या योग किया? ध्यान देना, योग एक कितनी बड़ी शक्ति है जो आत्मा को, बाबा कहता है जो सुई के ऊपर कट चढ़ी है वो कट उतर जाती है, जंक उतर जाती है, ऐसी घासलेट है। अगर बाबा की आत्मा ऐसे मगन हो जाओ तो आत्मा बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होगी, इंद्रियां शीतल होती जाएंगी, आत्मा मालिक बन करके कर्म इंद्रियों को चलाएगी, मन उसको गुलाम नहीं बनाएगा, मन उसके अंडर काम करेगा। बाबा कई बार कितनी मुरलियां चलाई हैं, राजयोगी आत्मा पहले स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, और यथार्थ युक्ति युक्त कंट्रोलिंग पावर उसको कहा जाता, जिसमें मन को जहां जितना समय हम स्थिर रखना चाहें वहां स्थिर हो सके, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, अपने घर में स्थिर हो जाओ, बाबा के समीप चले जाओ, अपने सूक्ष्म वतन में चले जाओ। मन ही तो एक वाहन है, अब मन को कोई ऐसे दबाए, मन को ऐसे मारे, मन से बातें करे, नहीं भटको नहीं भटको कहने से थोड़ी होगा, उसको अच्छा भोजन दो, अच्छा संग दो, अच्छा चिंतन ही भोजन है ना, अच्छे अच्छे विचार को, खूब नशे के, खुशी के, उमंग के, जो बाबा ने इतने वरदान दिए हैं, इतना पढ़ाया है, उसका मनन करो, चिंतन करो, मन इसमें बिजी कर दो तो व्यर्थ बातों से फ्री हो जाएगा, नहीं तो कितनी कंप्लेन है और कुछ नहीं कहेंगे, व्यर्थ संकल्प बहुत आते, व्यर्थ संकल्प बहुत आते, क्यों आते हैं? इसको तुमने अच्छे चिंतन में नहीं दिया। अच्छा चिंतन करो, अच्छे विचारों में रमण करो, अगर कभी भी समय मिलता है तो फिर इधर उधर बैठ करके गपबाजी करने की बजाय, संसार समाचार सुनने सुनाने की बजाय, आपका साहित्य है इतना अच्छा, इतनी मुरलियां हैं, स्टडी करो, कुछ अच्छी बातें बाबा के अंदर जाएंगी, मन में विचार चलेंगे, मन कंट्रोल में आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब हम भोजन ही उसको गलत दे रहे हैं, इधर उधर का, ये देखा वो देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और फिर कहते हैं भाई बड़े गंदे स्वप्न आते हैं, अमृत वेला ठीक नहीं होता है, कंप्लेन करते, पूछते रहते हैं ये प्रश्न ये प्रश्न, पूछ रहे हो लेकिन बाबा कहता है ये पूछ कब तक पूछ रहे हो, माना पूछ लगी हुई है, इसलिए ध्यान दो, पूछने की बजाय जो बाबा ने विधियां बताई हैं, किसी को तथास्तु कह करके वरदान नहीं दिया है हो जाएगा, ऐसा नहीं है, विधि से सिद्धि, अगर यथार्थ विधि पूर्वक अगर योग है, बाबा से अगर ठीक संबंध है, कनेक्शन जुटा हुआ है, एक के स्नेह में आत्मा समाई हुई है, तो भरपूर है, संपन्न है, संतुष्ट है, वो पर्सनैलिटी है उसकी, कुछ नहीं चाहिए आत्मा। बाबा देने वाले दाता ने इतना सब कुछ बच्चों को दिया है, ब्रह्मा बाबा का यही स्लोगन था, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी था, एक भी अंदर की हद की कामना नहीं रखी, कोई चीज की कामना नहीं रही, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन गई, ये योगी के चिन्ह हैं। हम योग कर रहे हैं लेकिन चिन्ह दिखाई नहीं देते, कहते हमारा योग है, बहुत अच्छा योग, हम रोज 2 बजे उठ के योग करते, क्या योग करते, विचार करना, विचार करना इस पर, अगर यथार्थ योग है तो उसके लक्षण जीवन में दिखाई देंगे। उसके जीवन में निमित भाव, नम्रचित भाव, निर्मल वाणी, बहुत शुद्ध, सबके साथ संबंध, संपर्क, हिसाब किताब हैं, ऐसे नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसकी भी इतनी परवाह नहीं है, इतना चिंतन नहीं है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। घड़ी घड़ी बाबा एक शब्द कहते हैं, घड़ी घड़ी के घड़ियाल नहीं बना। इसलिए ध्यान देना, अगर कोई ने कुछ बात कह भी दी जो मुझे पसंद नहीं है, उसको अंदर लेकर के अपने मूड को खराब कर लेना, अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना और सारा टाइम उसी का चिंतन करते रहना, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, बाबा कहता है बोलने वाला तो भूल भी गया होगा और तुमने उसको गांठ बांध लिया, अपने पास रख लिया, दुखी हो रहे हो। इसलिए डोंट केयर कहने की भी तो आदत डाल लो ना, कोई बात हो गई, कोई ने कुछ कह दिया, कोई पिछले अंदर बाहर का हिसाब किताब आया, ठीक है, सुधारना है तो अपने को हम बदल लेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, उसको सोच सोच करके उसके प्रति और नेगेटिव सोच करके नया हिसाब किताब न बने, बहुत ध्यान देना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा ने ये राजयोग सिखाया है, मालिक बन जाओ, एक एक इंद्रिय आपके कंट्रोल से काम करे, ऐसे नहीं देख लिया, सुन लिया, बोल दिया, हो गया, बाबा कहते ज्ञानी है क्या, पश्चाताप कर रहा है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा कभी भी पश्चाताप की घड़ियों को नहीं देखेगी, जो बोलेगी, जो करेगी, जैसे करे, सोच समझ के करेगी। और आत्मा पावन बन रही है, स्वच्छ बन रही है, निर्मल बन रही है, तो कहीं भी नया हिसाब किताब नहीं बनेगा, उसकी पवित्रता की पर्सनैलिटी के चिन्ह उसके इंद्रियों से, चलन से, चेहरे से स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तीसरी सब्जेक्ट बाबा जो इतनी ध्यान खिंचवा रहे हैं, दैवी गुणों की, जितना हमारे जीवन में दैवी गुण आते हैं उससे एक निश्चय बैठता है, भावना बैठती है कि एक सत धर्म की स्थापना हो रही है, धारणाओं से धर्म की स्थापना हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म बन रहा है और उसके लिए हम सब धारणाओं पर ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए, सहन करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन हमारे जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, उसमें हम लूज ना हो जाएं। क्या करें, ये तो दुखी हो गया है, तो परेशान हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, बाबा कहता दुख नहीं दो, लेकिन मर्यादा तोड़ करके कब कहा है दुख नहीं दो, मर्यादा तोड़ के सुख देना है क्या? इसलिए भगवान की श्रीमत क्या कह रही है उसको अंडरलाइन करो, श्रीमत सिर माथे, अगर श्रीमत प्रमाण आप चल रहे हो, कोई आत्मा आज दुखी है कल फिर से आपको धन्यवाद देगी कि तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया, तुम मेरे गुरु हो, लेकिन थोड़ा समय आपको बहुत पक्का होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। इसलिए कभी भी धारणाओं में, चाहे खान पान की धारणाएं हैं, चाहे ब्रह्मचर्य की धारणाएं हैं, चाहे संघ की धारणाएं हैं, जितना आप धारणाओं में पक्के रहोगे उतना सत्य धर्म के नींव बन जाओगे। सत्य धर्म की स्थापना धारणाओं से हो रही है। और जो हम कुछ सेवाएं कर रहे हैं, केवल बाबा कहता ब्राह्मणों को खिलौना दिया, खेल लो, बिजी रहो, कराने वाला तो बाबा है, लेकिन राजधानी की स्थापना हो रही है। जितनी हम सेवाएं कर रहे हैं, सेवाओं से अपना ही राज्य, घराना तैयार कर रहे हैं। इसलिए राजाई की स्थापना का आधार सेवाएं हैं। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो, इसको सेवा कहा जाता है। और ऐसी सेवा करने वाली आत्मा, सेवा करके डिस्टर्ब हो गए, सेवा करके थक गए, अशांत हो गए, दूरियां बढ़ गई, वो सेवा नहीं है जिसको हम सेवा कह रहे हैं। वास्तव में सेवा जब हम कहते हैं तो सेवा का अर्थ ही है हर एक को सुख मिले, हर एक आत्मा बाबा के समीप आ जाए, अपने जीवन को सफल कर ले, अपने तन मन धन को समर्पित करके अपना भाग्य बना ले, तो इस सेवा से राजाई की स्थापना होती है। और बाबा ने पांचवी बात भी कही है, ये हमारा परिवार है और ऐसा परिवार जो ट्रांसफर जब सतयुग में होगा तो एक मात पिता है, राजा रानी मात पिता हैं, बाकी सब एक परिवार के सदस्य हैं। पूरी कारोबार सतयुग की पैसे के लेन देन पर नहीं है। एक के घर में कोई अच्छी चीज पैदा हुई है, हो रही है, अभी तक भी भारत की संस्कृति रही है। हम लोगों का बचपन याद आता है, अगर हमारे घर में दूध अच्छा है, घी है, तो हम दूसरे के घर में पैसे से नहीं बेचते थे, उसको दे देते थे, इसके पास नहीं है। और उसके घर में कोई अनाज होता, वो फल होता, सब्जी होता, कुछ भी होता, तो वो रिटर्न में दे देता था। ये लेन देन थी, ये पारिवारिक लेन देन। जैसे आज मधुबन के अंदर इतनी सारी डिपार्टमेंट चलती हैं, कोई पैसे से लेकर के हम कारपेंटर से काम कराएं, या पैसे से हम अपने धोबी में घाट में कपड़े प्रेस कराएं, धुलाएं, परिवार है, हमारे कपड़े धुल के वो लोग दे रहे हैं, उनको अगर कोई आवश्यकता है तो हम उनको मदद कर रहे हैं, एक भंडारे से खा रहे हैं, चल रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन पैसे से लेन देन नहीं है। ये सतयुग की पारिवारिक फीलिंग इस समय हम सब ब्राह्मण जीवन में करें, इतना आपस में स्नेह हो, संबंध हो, जो एक दूसरे के साथ सहयोगी बन करके रहे। सिर्फ ध्यान इतना रखना, कई बार परिवार कह करके परिवार के लेन देन में फंस जाती है आत्मा, परखने की शक्ति की कमी होने के कारण कई आत्मा इतने समीप आ जाती हैं, सेवा में हर प्रकार से एक्टिव दिखाई देती हैं, नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, बहुत भावना से आते हैं, देखते हैं ये बाबा का बच्चा बड़ा अनन्य है, बहुत सहयोगी है, बड़ों के बहुत समीप है, लेकिन उसकी भावनाएं क्या हैं उसको परख नहीं पाते। फिर धीरे धीरे वो देखता है पैसे वाला भाई है, पैसे वाली माता है, भावना है इसकी, उसको कहेगा मुझे 10,000 की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है, और ऐसे करके पैसे लेन देन करके आपस में जब 2-4 करोड़ इकट्ठा करे और भाग जाए, चला जाए, और फिर कहो मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बाबा का बच्चा था, वो तो अनन्य था, उसमें दीदी क्या करेगी, बाबा क्या करेगा। ध्यान देना, इसके लिए बाबा कहता है बच्चे परखने की शक्ति को बढ़ाओ, कौन किस भावना से आ रहा है, क्या उसका लक्ष्य है, भावना में बह नहीं जाना, भावना और विवेक का बैलेंस रखना। जहां भावना के साथ विवेक है, बुद्धि है, बुद्धि जजमेंट देती है, राइट रॉन्ग की समझ देती है, कुछ भी करना है, कभी भी कुछ करना है, निस्वार्थ भाव से करो भले को, लेकिन ऐसी भावना में ना जाओ जो आपको ठग करके कोई चला जाए। कई लोग बैज पहन लेते हैं, सफेद ड्रेस पहन लेते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं लोग बड़े सीधे हैं, सरल हैं, धीरे धीरे आकर के संबंध संपर्क में आते फंसा लेते अपने में। तो ध्यान देना, ये फैमिली जरूर है लेकिन फैमिली के अंदर बैलेंस है, जितना प्यारे उतना न्यारे हैं। दादी जानकी का एक शब्द सुना के मैं पूरा करता हूँ। दादी कहती थी मैं कभी किसी में फंसती तो नहीं हूं लेकिन ध्यान देती हूँ कोई मेरे में न फंस जाए, मेरे में भी कोई फंस जाए कहीं तो। इतना आप पर आपको अपना अटेंशन रखना है कि इतना मीठे नहीं बन जाओ तो चीटियां ही लग जाए आकर के। तो बैलेंस से चलना पड़ेगा। बैलेंस जहां है वहां ब्लिसफुल लाइफ है, बैलेंस जहां है वहां ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती हैं। तो ध्यान देना, फैमिली में बहुत अच्छे बैलेंस से चलो, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। ध्यान देना, जहां व्यवहार है वहां परमार्थ भी है, और जहां परमार्थ है वहां व्यवहार भी है। ऐसे व्यवहारिक नहीं बन जाओ जो परमार्थ भूल जाए, बाबा ही भूल जाए, और इतना परमार्थ के पीछे नहीं लग जाओ जो रचना रची है, व्यवहार रचा है, किया है, वो भी डिस्टर्ब हो जाए। कई को जोश आता है और बाबा कहता जोश में होश खो देते हैं, नाम किसका खराब होता है, ब्रह्मा कुमारियों का, इनके यहाँ गए ये हमारे, इनका घर ही पिट गया, इनके बच्चे ही रुल गए, ये तो अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते, ये तो बाबा ने सिखाया नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो जोश में होश को खत्म कर रहा है, खोया हुआ है। ऐसी सुध-बुध नहीं भूल जाना, मुरली की धुन हमको विकारों से मुक्त करने के लिए, देह अभिमान की सुध-बुध को बोलने के लिए है, समझ को खो देने के लिए नहीं है। तो सभी मुरली की मस्ताने, मुरली को सुनो, मुरली को समझो, और अगर यथार्थ मुरली को समझा है तो कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकता। आत्मा अपने आप कर्मेंद्रिय जीत पवित्र शुद्ध बनती जाएगी। ओके, ओम शांति। अभी हम सभी आधा घंटे के लिए बहुत दिल से प्यार से इसी सभा में हम बाबा का आह्वान करेंगे। है इतना दिल का प्यार, प्यार से किसी को कहा जाता आ जाओ तो सभी ऐसे भ्रकुटी आसन पर अपने दिल तख्त पर बैठ जाओ। दिल तख्त ये दिल नहीं है, यही दिल तख्त है, आत्मा का काल तख्त। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, बहुत ऊंचे समान में स्थित होकर के बाबा को बहुत प्यार से कहो, बाबा ये दिल का आसन आपके लिए बहुत स्वच्छ खुला हुआ है, आ जाओ। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के बाबा के कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, कंबाइंड जैसे जुड़वा एक साथ। तो आत्मा और परमात्मा का ये मिलन परमानंद की अनुभूति करा देगा। इस भौतिक जगत से पार सूर्य चांद तारागणों से भी दूर अपने लाइट के वतन में फरिश्तों की दुनिया में मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में विराजमान अव्यक्त फरिश्ता हूं। बाप दादा अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा मुझ आत्मा को समान भव का वरदान दे रहे हैं। उनके नैनों से मस्तक से बहुत पवित्र शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सर्वशक्तियों से संपन्न बना रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं उनके समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप से विश्व कल्याण की सेवा के लिए ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति में स्थित होकर चारों ओर सर्वशक्तियों की किरणें सर्वशक्तियों की सकास सर्च लाइट के रूप में दे रहा हूं। फरिश्ते स्वरूप से पूरे विश्व की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज कर शांति और शक्ति की किरणें दो। Thank you. इस कल्प वृक्ष की जड़ों में वृक्षपति बाबा के साथ मास्टर वृक्षपति बनकर अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा पूर्वजपन के समान में स्थित होकर पूरी वंशावली को, पूरे ही वृक्ष को सर्च लाइट दो। हर आत्मा के प्रति यही शुभ चिंतन इमर्ज करो, सबका भला हो, सब सुख पाए। इस भाव सागर से दुखों के सागर से मुक्त हो, मुक्ति का वरदान, मुक्ति का वर्षा मुक्तिदाता बाबा से लेकर मुक्त हो जाए। Thank you. सभी अपने पूज्य स्वरूप में इष्ट देवी और इष्ट देव स्वरूप में स्थित होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो। अनेक आत्माएं दर्शन करने के लिए तड़प रही हैं। पल भर के दर्शन से भी प्रसन्न हो जाती है। सभी अपनी चैतन्य स्वरूप में इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में कुल देवता और कुल देवी के रूप में स्थित होकर हर आत्मा को तृप्त करो, संतुष्ट करो, नजर से निहाल कर दो। चलो अपने ही निराकारी वतन में ज्ञान सूर्य बाबा के बहुत समीप उस सितारों की दुनिया में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, परम धाम घर की असीम शांति का, पवित्रता का, शक्तियों का अनुभव करो। वो नवलीन स्थिति जिसमें आत्मा परमात्मा में उनके प्यार में जैसे समा गई।